नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी
और मैं अंजलि जोशी।
स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम
जब चलें शहर की ओर में। नरेंद्र, तुम्हें पता है आज रह कर मुझे सुगंधा की याद आ रही है।
अंजलि, सुगंधा कौन है?
सुगंधा मेरी दोस्त है। उसकी शादी गाँव में हुई है और अब वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले है ना, वो उसे आगे पढ़ाने के पक्ष में नहीं है।
अंजलि, ये समस्या सिर्फ तुम्हारी दोस्त सुगंधा की नहीं है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग न मिलने की वजह से पढ़ नहीं पाती।
तो क्यों ना नरेन, आज हम अपने श्रोताओं से पूछें कि क्या लड़कियों का शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना गलत है।
अंजलि, हम अपने श्रोताओं से ये सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन धारावाहिक शहर की ओर सुनने के बाद।
लेकिन उससे पहले हम अपने दोस्तों को बता दें कि कार्यक्रम जब चले शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों, अगर आप हमसे प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176782। और आइए अब आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 39वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, मधु अपने बचाए हुए पैसों से साहूकार से अपनी गाय छुड़ा लाती है, लेकिन माजी मधु पर नाराज होती है क्योंकि मधु ने वो पैसे माजी से छिपा कर बचाए थे। उधर चंदर और गजेंद्र मुंबई जाने का फैसला कर चुके हैं। वो रेस्टोरेंट के मालिक को अपने मुंबई जाने की बात बताते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
ये आ गई अपने सपनों की नगरी मुंबई।
पर चंदर यार, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? इस गाड़ी से कोई मिनिस्टर भी आ रहा है क्या?
पता नहीं यार गज्जू, किसी से पूछ लेते हैं।
साहब, आपका सामान टैक्सी तक पहुँचा दूँ?
तुम क्यों रखवाओगे भाई, हम खुद ले जा सकते हैं।
नहीं रखवाना तो मत रखवाओ, गर्म काय के होते हो।
अच्छा अच्छा, ये बताओ भाई, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कुछ खास है क्या?
लग तो रहा है मुंबई में नए आए हो।
हाँ भैया,
तभी तो ऐसा पूछ रहे हो, ये तो यहाँ का रोज का नजारा है।
अच्छा,
अभी और कुछ पूछना बाकी है ना, मैं जाऊं?
अरे जाओ भाई जाओ।
चंदर, अपना सामान संभाल के रखना, कहीं कोई चोर उचक्का मौका पाकर हाथ ना साफ कर जाए। अच्छा चंदर, तूने उस विज्ञापन वाले आदमी को फोन तो कर दिया था ना कि आज हम आ रहे हैं?
नहीं यार।
नहीं?
अरे तो इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है, अभी यहाँ से बाहर निकल कर फोन पे बात कर लेते हैं।
लेकिन चंदर, मुंबई आने से पहले तुझे सब कुछ पक्का कर लेना चाहिए था ना यार।
अरे गज्जू, अब हम शहर में कोई नए तो है नहीं, दिल्ली में भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी ना, और फिर यूं ही कोई अखबार में इश्तेहार तो नहीं दे देगा। तू पता नहीं क्यों फिक्र कर रहा है, रुक अभी मैं सामने PCO से फोन पर बात करके आता हूँ।
मधु बौजी,
अरे क्या हुआ चुटकी, तू ऐसे दौड़ती हुई क्यों आ रही है?
आपके नाम से डाक आई है, ये देखिए चंदर भैजी ने भेजी है।
इनकी चिट्ठी आ गई, ला इधर दे।
भैजी ने जरूर पैसे भेजे होंगे, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। माँ माँ, चंदर भैजी की चिट्ठी आई है।
अरे छुटकी सुन तो।
भाई साहब एक फोन करना है।
लोकल STD?
यही का नंबर है भैया, मुंबई का।
तो ऐसा बोलो ना लोकल है।
हाँ हाँ भैया लोकल है।
इस फोन से कर लो।
हाँ 9827। हाँ घंटी जा रही है गज्जू।
हेलो शिवम प्लेसमेंट।
हेलो नमस्ते सर।
नमस्ते
जी, मैं चंदर बोल रहा हूँ।
चंदर,
वो कुछ दिनों पहले आपसे बात हुई थी ना शिप वाली नौकरी के बारे में।
हाँ तो
सर, हम यहाँ आ गए हैं मुंबई में नौकरी के लिए।
ठीक है, 2 दिन बाद ऑफिस में आकर मिलना।
सर 2 दिन बाद? लेकिन हम 2 दिन रहेंगे कहाँ सर, यहाँ हम किसी को जानते भी नहीं है।
किसी को नहीं जानते हो तो मुंबई आने के लिए किसने कहा था?
सर क्या हम आज नहीं मिल सकते?
देखिए आप जैसे यहाँ हजारों आते हैं, अब किस किस को टाइम देंगे? आपको 2 दिन बाद का टाइम दिया है ना, तो 2 दिन बाद ही आना।
जी अच्छा, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे।
ठीक है।
अरे मधु, ये छुटकी क्या कह रही है? चंदा ने पैसे भेज दिए?
माँ जी वो,
अरे बता ना कितने पैसे भेजे हैं?
माँ जी उन्होंने पैसे नहीं, दाखिले का फार्म भेजा है।
दाखिला? कैसा दाखिला?
वो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ ना, उसी के दाखिले का फार्म भेजा है।
हे भगवान, इसकी तो मती मारी गई है। घर गृहस्थी की बातों में तो उसका मन लगता ही नहीं है। अरे गांव में और भी बुआरियां हैं, भला सुना है कि किसी की बुआरी आगे पढ़ रही है?
पर माँ जी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, और ये बात इन्हें शादी के समय से मालूम थी।
अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, और देखो कैसे जुबान चला रही है।
लेकिन माँ इसमें गलत ही क्या है? वैसे भी मधुबाची को सारी पढ़ाई तो घर बैठे ही करनी है, सिर्फ परीक्षा देने ही शहर जाना होगा, और फिर घर में कोई कॉलेज का पढ़ा होगा तो कितना अच्छा होगा। बौजी आप जब शहर जाओगी तो मैं भी साथ में चलूंगी।
तू चुप कर छुटकी, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, और फिर तेरी ये पढ़ाई का खर्चा वो कौन देगा?
माँ जी पैसे की फिक्र आप मत कीजिए, उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। मैं ज्यादा काम करूंगी, ज्यादा जूस की बोतलें बनाऊंगी, ज्यादा पैसे कमाऊंगी।
तेरा क्या मतलब है मैं सब जानती हूँ, अभी ये बुढ़िया इतनी नहीं सठियाई कि तेरा मतलब भी ना समझ सके।
माँ जी मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए, और देखिए अब तो उन्होंने भी मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी है।
अरे वो तो पागल हो गया है, उसे दुनियादारी की क्या समझ, इसने बोल दिया उसने मान लिया।
माँ आप घर और खेत के काम की चिंता मत करो, वो मैं और मीरा बौजी मिलकर संभाल लेंगे।
नहीं नहीं माँ जी, घर और खेतों के काम काज में भी कोई हर्जा नहीं आएगा।
माँ पढ़ने दो ना बौजी को, मेरा तो मन ही नहीं लगता था कभी किताबों में, पर बौजी तो हर बार स्कूल में अव्वल आई हैं। हमारे घर में कोई अच्छे से पढ़ा लिखा होगा तो फिर वो साहूकार भी धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा।
अच्छा भाई जो मन में आए वो करो।
चंदर कितने बजे बुलाया है?
यार दो दिन बाद आने के लिए बुलाया है।
क्या?
हाँ यार बोल रहा था आज मिल पाना थोड़ा मुश्किल है।
लेकिन चंदर हम दो दिन करेंगे क्या, और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, और फिर तेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। देख हम अभी भी दिल्ली वापस जाकर अपनी पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर सकते हैं।
अरे क्या गज्जू, तू बेकार में ही घबरा रहा है। और कुछ नहीं हुआ यार मुझे, सिर्फ दो ही दिन की तो बात है, और फिर दो दिन बाद तो हमें नौकरी मिल ही जानी है।
लेकिन चंदर दो दिन हम रहेंगे कहाँ?
अरे यार कहीं भी रह लेंगे।
कहीं भी मतलब?
मतलब प्लेटफॉर्म पर।
प्लेटफॉर्म पर क्या बात कर रहा है यार तू?
यार सिर्फ दो ही दिन की तो बात है गज्जू, दो दिन बाद वहाँ नौकरी मिली और घर का इंतजाम भी हो गया।
वैसे यहाँ प्लेटफॉर्म पर रुकने की कोई जगह दिख नहीं रही मुझे।
चल पहले एक काम करते हैं, समंदर देखने चलते हैं, रात होते होते यहाँ पैर पसारने की जगह तो मिल ही जाएगी।
ठीक है यार चल।
सुषमा देख बेटा किसका फोन है। सुषमा पता नहीं कहाँ चली गई, मैं ही देखता हूँ। हेलो।
हेलो कौन? पिताजी, पिताजी मैं कविता।
कविता?
हाँ पिताजी आप कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है और राजेश कैसे हैं?
मैं ठीक हूँ पिताजी, और राजेश भी ठीक है। अच्छा पिताजी आपको टिकट्स मिल गई ना?
हाँ बेटा मिल गए, वो पैसों की जरूरत नहीं थी बेटा।
वो राजेश ने जिद करके भेज दिए थे।
अच्छा
सारी तैयारियाँ पक्की है ना?
बेटा सारी तैयारी हो चुकी है, परसों शाम 4 बजे की गाड़ी है।
ठीक है, पर हाँ पिताजी रास्ते में किसी से कुछ खाने पीने का सामान मत लीजिएगा, या ऐसे किसी अजनबी पर भरोसा मत कीजिएगा। और हाँ मैं और राजेश आपको मुंबई स्टेशन पर मिलेंगे, यहाँ पर राजेश को आपका बहुत इंतजार है।
बेटा राजेश से कहना हम भी उससे बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं।
अच्छा पिताजी कह दूंगी, अब रखती हूँ।
ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। हे भगवान जल्दी से जल्दी अब इसकी शादी हो जाए।
चंदर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वाली नौकरी छोड़कर हमने गलती की है।
तू भी ना गज्जू बार बार एक ही बात को दोहराता रहता है, देखना अभी दो दिन बाद जब 50,000 रुपए वाली नौकरी मिलेगी ना तब तू खुद ही कहेगा कि हमने दिल्ली वाली नौकरी छोड़कर कोई गलती नहीं की। अरे अरे कहाँ सीट के नीचे घुसे जा रहे हो?
अरे भाई मुझे छुपने दो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है।
तो तुम चोर? अरे दर्शन तू?
अरे चंदर तू?
चंदर तू इसे जानता है?
हाँ यार ये मेरा दोस्त है दर्शन, मेरे ही गांव का है।
चंदर चंदर मुझे छुपा ले यार, वरना पुलिस मुझे पकड़ लेगी।
रुक 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 गज्जू एक काम कर, वो बोरियां इसके ऊपर डाल दे, पुलिस को लगेगा कोई सामान पड़ा है।
ठीक है चले।
कहाँ
कहाँ चला गया रे, कहाँ चला गया? ए, ए छोकरटो, इधर आ गया रे।
जी साहब।
यहाँ से अभी किसी आदमी को भागते देख ला के?
वो जो काली शर्ट में था।
अरे हाँ हाँ वही, किधर गया है वो?
वो तो साहब आगे गया है।
आज छोड़ोगे नहीं अपन, नाक में दम कर रखे ला रे, नाक में दम कर रखे ला रे।
ए दर्शन, चल बाहर निकल, चला गया वो। और अब मुझे ये बता कि वो पुलिस वाला तेरे पीछे क्यों भाग रहा था?
सब बताता हूँ यार, पर पहले तू बता, तू यहाँ कैसे?
ये मेरा दोस्त है गज्जू, और हम दोनों आज ही यहाँ आए हैं। जिसने हमें यहाँ नौकरी के लिए बुलाया है, उसने बोला है कि दो दिन बाद आना। अब यार रहने का कोई ठिकाना तो है नहीं, तो सोचा कि प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजार लें।
रहने को ठिकाना कैसे नहीं है तेरे पास?
मतलब?
अरे जब तेरा दोस्त मुंबई में है तो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। चल मेरे साथ मेरे कमरे पर।
तेरे कमरे पर?
क्यों, नहीं चल सकता क्या?
लेकिन यार वो पुलिस।
अरे वो सब तुझे कमरे पर चलकर बताता हूँ।
गज्जू क्या कहता भाई?
देख ले भाई, जैसा तू ठीक समझे।
ठीक है तो चल।
ये हुई ना बात।
नरेन सुना तुमने, मधु की भी वही समस्या है जो सुगंधा की है। मैं पूछती हूँ आखिर क्यों लड़कियों से शादी के बाद उनके आगे पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाता है?
अंजलि आओ पूछते हैं अपने श्रोताओं से कि क्या उनके अनुसार लड़कियों का शादी के बाद पढ़ना गलत है।
औरत का शादी के बाद पढ़ाई जारी रखना गलत नहीं है, क्योंकि आज के युग में पढ़ाई ज़्यादा जरूरी हो गई है। और इसके साथ साथ ही प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2005 के अनुसार सबको पढ़ाई का अधिकार है। जब पुरुष शादी के बाद पढ़ाई कर सकते हैं तो औरत का भी शादी के बाद पढ़ाई जारी रखना गलत नहीं है।
मेरे अनुसार लड़की को पढ़ाई करनी चाहिए, वह इसलिए कि जो उसकी बचपन से जो सोचे हैं वह शादी के बाद भी पूरी हो सकती हैं, तथा इससे यह होता है कि अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो इसलिए लड़की को शादी के बाद भी पढ़ाई करनी चाहिए।
बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको ज्ञान बढ़ता है, आगे वो अपने भविष्य में कुछ सोचेगी, कुछ करेगी, आगे अपने बच्चों के लिए कुछ करेगी, उसको पढ़ना जरूरी है। वो तो बिल्कुल सही है ना, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए।
औरत का शादी के बाद पढ़ाई जारी रखना बहुत ज़रूरी है, भले औरत को बड़ी दिक्कत होती होगी, घर में सब कुछ देखना है, फिर भी पढ़ाई करना है, क्योंकि आज आत्मनिर्भर रहना, अपने पैरों पर खड़ा होना एक मानवीय कर्तव्य है। इसलिए जिसकी अधूरी शिक्षा हो, मेरा अपना ये मत है, वो औरत शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखे, जिससे वो समाज के साथ चल सके और अच्छा बुरा की पहचान आ सके।
सूरज मेरी खिड़की से जो है झांकता, किरणों को जैसे मिल गया है रास्ता, हस्ती हुई आ गई कमरे में, जितनी नींद थी सब उड़ गई, उम्मीद जाते जाते वापस मुड़ गई, लौट आई है फिर यही ये आज क्या हो गया।
तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोगों की राय, जिसे जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने। वैसे अंजलि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद लड़कियां पढ़ ही नहीं पाती, अगर लड़कियां ठान लें कि उन्हें आगे पढ़ना है तो हर परिस्थिति हर हालात को उनके आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं।
तुम किसकी बात कर रहे हो नरेन?
मैं बात कर रहा हूँ शशि राणा की, जो सौराखाल से हैं।
श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी परसवान, और आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी औरत से करवा रही हूं जिन्होंने की शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो बात करते हैं अब उनसे। आपका परिचय?
मेरा नाम शशि राणा, मैं बांसी की हूं, जिला रुद्रप्रयाग। मेरी शादी 5 मार्च 2001 में हुई थी। जब मेरी शादी हुई मैं BA PPS में पढ़ती थी। शादी के बाद भी मेरा विचार था कि मैं पढ़ाई करूँगी। मेरे ससुराल वाले तो नहीं चाहते थे कि ये पढ़ाई करे, मगर मेरे पति चाहते थे कि ये पढ़ाई करे और अपनी ज़िंदगी में कुछ करे।
आप अपनी पढ़ाई को शादीशुदा ज़िंदगी में कैसे संतुलित रख रही हैं?
शादी के बाद तो पढ़ाई बहुत कठिन कार्य है, पर मैंने इस सारी कठिनाइयों का सामना करने पर अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं अपना ससुराल का काम निपटा कर अपना टाइम लेकर पढ़ाई करती थी, सुबह उठकर के पढ़ाई करती थी।
अगर कोई महिला शादी के बाद आगे पढ़ना चाहती है तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं?
शादी के बाद तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि घर परिवार और समाज के लोग अलग अलग प्रकार की बातें सोचते हैं। कोई कहता है कि शादी के बाद भी विद्यार्थी जीवन है, कोई कुछ कहता है, मगर मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, अपने विचारों पर अटल रहती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ।
कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के,
और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी काम की बात की तरफ।
दोस्तों, हमारे काफी सारे प्रवासी दोस्तों को बेरोजगारी के कारण अपना परिवार और घर छोड़कर शहर नौकरी की तलाश में आना पड़ता है,
और युवाओं को बड़े शहरों की चकाचौंध गांवों से शहर खींच लाती है।
नरेन, गांवों में रहने वाले हमारे काफी सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम की संभावनाएं ज्यादा हैं और यहां उन्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं।
लेकिन इसके साथ उनके लिए ये जानना भी जरूरी है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में नौकरी कैसे प्राप्त की जाए।
तो दोस्तों, बड़े शहरों में नौकरी तलाश करने का सबसे साधारण उपाय है समाचार पत्र, जिनमें नौकरियों के विज्ञापन आते रहते हैं।
साथ ही आप नौकरी के लिए अपने किसी ऐसे दोस्त या फिर रिश्तेदार से संपर्क कर सकते हैं जो पहले से ही शहर में रह रहा हो।
लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ जालसाज कंपनियां अखबारों में झूठा विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह भी करती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप विज्ञापन देने वाली कंपनी के बारे में पूरी छानबीन करें।
कोशिश करें कि वो पहले आपका इंटरव्यू फोन पर ही ले लें,
और जब आपको लगता है कि कंपनी सही है तभी आप नई जगह जाने की योजना बनाएं।
अगर नई जगह जाने पर आपको बताया जाता है कि आपको नौकरी के लिए चुन लिया गया है तो उनसे अपॉइंटमेंट लेटर मांग लें। और दोस्तों, अगर आप मुंबई जैसे बड़े शहर में जाने का मन बना ही चुके हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों जो कि पहले से ही मुंबई में रह रहे हैं नौकरी के लिए संपर्क करें।
साथ ही मुंबई में नौकरी तलाशने का एक और अच्छा जरिया है इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए आप www.bharatmazdoor.com इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहां पर अपना रेज्यूमे डाल सकते हैं।
bharatmazdoor.com का कार्यालय मुंबई में ही स्थित है और वहां का पता है
bharatmazdoor.com, शॉप नंबर 6, BMC कॉलोनी नंबर 1, मालवानी, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095, महाराष्ट्र।
आप चाहें तो वहां फोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। वहां का फोन नंबर है 09820206876।
तो दोस्तों, ये थी आज की काम की बात। अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782223।
मेरी 2 टका की नौकरी माँ, से तेरी कुटुम दर पलेणी चा। मेरी को कमाई तुए तनी दिखेणी चा, मेरी को कमाई तुए तनी दिखेणी चा, दिखेणी चा, दिखेणी चा। या मेरी 2 टका की नौकरी माँ, तेरी कुटुम दरी पवेणी चा
और अंजलि, अब हम बढ़ते हैं आज की चिट्ठी की तरफ।
दोस्तों, आज के विजेता हैं रुद्रप्रयाग से भरत सिंह राणा। भरत सिंह राणा जी ने लिखा है कि सन 1978 में जब मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, उस समय हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। पिताजी 500-700 रुपए 4-5 माह में कमा के लाते थे, उसी से परिवार का खर्चा चलाते थे। मुझे ज्ञान हो गया था कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत मजदूरी करके फीस और किताबें तैयार करनी है। इसीलिए मैं छुट्टियों में लोक निर्माण विभाग में पेंटिंग के कार्य करने हेतु चला जाता था और तार कोल के गर्म टिनों को उठाता था। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई कक्षा 12 तक की, पर पैसों के अभाव में आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और नौकरी ढूंढने के लिए लेंसडाउन चला गया। वहां पर मजदूरी करके और एक टाइम का खाना खाकर 300 रुपए कमाए। उसी पैसे से मैं फिर नौकरी करने के लिए दिल्ली चला गया। भटकते भटकते मैं गुड़गांव के फैक्ट्री एरिया में पहुंचा और मुझे 300 रुपए में हेल्पर की नौकरी मिल गई। समय का चक्र चला, मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे में फोड़ा हो गया, जिससे काम करना बहुत मुश्किल हो गया। वहां से मैं पुनः वापिस घर आया और हाथ का इलाज करवा कर वन विभाग में श्रमिक के रूप में लगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी और ईश्वर ने मेरी सुनी और मैं 1988 में वन रक्षक के पद पर लग गया। तब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। उसी बीच मेरी शादी हुई। अब मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, जो कि हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहे हैं।
भरत सिंह राणा जी, आपकी चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, अगर आप भी भरत सिंह जी की तरह ऐसा ही आकर्षक इनाम जीतना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
और अपनी चिट्ठियां हमें भेजिए इस पते पर, कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
कतरा कतरा उड़कर सागर बादल बनता है,
लुक छुप करता जुगनू रास्ता रोशन करता है।
कर ले सब कुछ यहाँ ये तेरा है जहाँ चल जीत ले दुनिया रे। कर ले सब कुछ यहाँ ये तेरा है जहाँ चल जीत ले दुनिया रे।
और दोस्तों अब सुनते हैं हमारे आज के संदेश
जिन्हें भेजा है हमारे प्रवासी दोस्तों ने अपने परिवार दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए।
मेरा नाम शीतल विष्ट है और मैं छोटा छोटा चंबा टीरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मैं अपने पापा को संदेश देना चाहती हूँ जो गुड़गांव में रहते हैं और उनका नाम श्री बलबीर सिंह विष्ट है। मैं उन्हें कहना चाह रही हूँ कि वो घर आ रहे थे और उन्होंने डेट नहीं बताई कि वो कब आ रहे हैं, तो उन्हें बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ वो फ़ोन करके बताएँ कि वो कब आ रहे हैं।
मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये संदेश अपने बेटे संगीता को देना चाहता हूँ जो कि देहरादून में रहती है। बेटे क्या हाल है? बाकी आपका फ़ोन काफ़ी टाइम से नहीं आया, ने हैप्पी न्यू ईयर में आया था। बाकी अपने मम्मी पापा को मेरी ओर से नमस्ते और प्यार बोलना।
मैं सूरज रावत बनू छूँ, मैं 25 साल का छूँ। यूँ मैसेज मैं दिल्ली बैठ भेजना छूँ गढ़वाल अपर माँ खण पिता खड़े और भाई खड़े। हाँ माँ पिता नमस्ते, मैं एक ठीक ठाक छूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम सब ठीक ठाक मिला। हाँ तुम्हारे फ़ोन आई चाहिए कि मैं यार ब्याह खन बना चाहता हूँ। मैं यार आटे अब तो मेरी नौकरी चाकरी भी ठीक नहीं है। 7-8 हज़ार रुपये मैं तनख्वाह मिलेंगे और 7-8 हज़ार में क्या हूँ और जब तक लड़ी की बात से तो हो ही जाल बात कक न कक तो हो ही जाल। इतना जल्दी कुछ नहीं पड़ी जब तो मैं 24 साल हो चुकी आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है और जब तुम बोलने मिलते वो क्या करो।
मेरा नाम सुमित्रा पुंडीरा, मेरे गाँव को नौसीवटा। हाँ अपन नौनी तो रेवाड़ देना हूँ कल्पना पुंडीरा हुई ना हूँ उत्तरकाशी में रही जुसियाड़ा और लदाड़ी हुई कॉलेज पॉलिटेक्निकल अभी सेकेंड ईयर हुई चाड़ने लगी। अब बाबा बुन ढंग से खाणो पीणो खाने टाइम से स्कूल जाने टाइम से आने फालतू बच्चों की दोस्ती नहीं करनी जो पढ़ाई वाले नौनियों को गलो करनी सभ्य नौनियों को और बाबा आपस में प्यार से रहने जब प्यार से रहा तभी सब चीज सुंदर लग दो बेटा।
मैं कभी दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं मां तुझे सब है पता मेरी माँ।
तो ये थे आज के संदेश और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो अपना नाम और पता हमें SMS कर सकते हैं।
हमारा नंबर है 9197176782।
दोस्तों प्रवास से जुड़ी छोटी से छोटी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके और हमारे प्रवासी दोस्तों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे कार्यक्रम के जरिए बाकी प्रवासी दोस्तों के साथ बांट सकते हैं।
साथ ही आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए और अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी आप हमें चिट्ठियों के जरिए बता सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा, मंदाकिनी की आवाज़ भड़ज और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ दोस्तों हमें प्रवास से जुड़े अपने अनुभव के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल आईडी और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com यानी shaherkior@gmail.com
और पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
और दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।